समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
भी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो
दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के ताजा समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, फिर बात होगी मौसम के मिजाज की और इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का भी जिक्र करेंगे है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से, और याद करेंगे ऐसी कुछ जानी मानी हस्तियों को जिनका है आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। आज आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी हैं आपकी जानी पहचानी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार मुनीश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड लाइक ही सेड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे इज 28th of February 2026, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वील बी beginning with the month of March. So let's just celebrate this last day and let's just begin our program with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide human papillomavirus vaccination program for girls aged 14 years from Ajmer in Rajasthan today. The nationwide rollout marks a decisive move in country's public health journey and fulfills the government's commitment to advancing the vision of Swasth Nari, ensuring prevention, protection and equity at the core of women's health care. The program will target approximately 1.15 crore girls aged 14 years every year across all the states and union territories. The vaccine will be provided free of cost at designated government health facilities. Vaccination will be conducted at Ayushman Arogya Mandirs, community health centers, sub-district and district hospitals, as well as government medical colleges and hospitals. Vaccination will be voluntary and informed consent from parents or guardians will be obtained prior to administration. More on this from our correspondent.
India's national program will use a quadrivalent HPV vaccine, Gardasil. HPV vaccines are among the most extensively studied vaccines globally, with more than 500 million doses administered worldwide since 2006. Scientific evidence demonstrates almost 100% effectiveness in preventing cancer. With this launch, India will join over 160 countries that have introduced HPV vaccination into their immunization schedules. The special campaign will run in mission mode over a 3-month period, during which eligible girls can receive the vaccine daily at designated facilities. Thereafter, the vaccine will continue to be available on routine immunization days. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
प्रधानमंत्री आज गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से स्थापित ये सुविधा भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
CBI, that is the Central Bureau of Investigation, has moved Delhi High Court challenging the acquittal of Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, Party Leader Manish Sisodia and others in the corruption case related to the Delhi Liquor Policy case. The move comes after hours after the trial court passed the order. The trial court acquitted all the 23 accused persons in the case, including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and K. Kavita. The CBI has said that the trial court in its order has ignored several important aspects of the investigation and the material has not been considered adequately.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग आज पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित करेगा। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम भी शामिल रहेंगे जिनके पहचान पत्रों का सत्यापन विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया। मसौदा सूची में लगभग 7,08,00,000 मतदाताओं के नाम होंगे जो अंतिम सूची में भी बने रहेंगे। हालांकि इस सूची को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उनके नाम स्वाभाविक रूप से सूची में शामिल होंगे और जिनके नाम हटाए जा रहे हैं उनके नाम के आगे हटाएं लिखा होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूची आज दोपहर तक ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और ईसीआई नेट ऐप पर भी देखा जा सकता है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी प्रतियां भेजी जाएंगी और इसके अलावा 2 हार्ड कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी जाएंगी। कोलकाता में दस्तावेज जिस ऑफ बिल्डिंग और सर्वे बिल्डिंग में भी रखे जाएंगे।
Artificial intelligence is playing a transformative role in the service sector by enhancing customer experience, streamlining operations, and improving decision-making through advanced data analytics. The recently concluded India AI Impact Summit 2026 in New Delhi highlighted how AI is rapidly reshaping the service sector, such as hospitality, healthcare, retail, banking, and logistics. Talking to Akashwani News during the summit, Prashant Malvi, founder and chief technology officer of Right Left AI, said that his company is developing an AI-enabled communication platform designed specifically for दिव्यांग persons.
हम ये चाहते हैं कि सभी सिटीजन के द्वारा जो लोग बोल सकते हैं जो नहीं बोल सकते हैं उनके लिए भी हम एक ऐसा कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाएं ताकि वो भी कल को अपनी नौकरी के लिए या किसी और जगह पे काम के लिए उनको स्ट्रगल करने की जरूरत ना हो। एआई समिट में आके हम लोगों ने देखा कि लॉट ऑफ मेनी एप्लीकेशन जिन्होंने हर किसी में काम किया है उस एआई समिट में हमें भी ये जानने को मिला है कि हमारे साथ साथ और भी कितनी ऐसी एआई कंपनियां हैं जो इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हम सभी लोगों को एक साथ ले जाने का काम कर रही हैं। हमें भी सीखने को मिला है और आशा करते हैं हम लोगों ने भी जो एप्लीकेशन लोगों के लिए बनाई है वो भी उन सभी लोगों के
और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने कल रात कोलंबो में खेले गए सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 161 रन का लक्ष्य इंग्लैंड ने 19 ओवर और 3 गेम में 6 विकेट पर हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे। विल जैक्स को चुना गया मैन ऑफ द मैच। प्रतियोगिता में आज सुपर 8 के ग्रुप 2 में पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका से। श्रीलंका में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं कल रात चेन्नई में खेले गए सुपर 8 के एक महत्वपूर्ण मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से पराजित किया। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत का सामना कल कोलकाता में वेस्टइंडीज से होगा। इस मैच के परिणाम के आधार पर टूर्नामेंट में भारत की आगे की राह तय हो जाएगी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल खेले जाने हैं 4 और 5 मार्च को, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को। और दोस्तों, अब रुख करते हैं महानगरों की खबर की ओर। तो सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली की सड़कों पर लगभग 40 साल बाद डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पेशल हेरिटेज टूरिज्म के लिए डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह कदम विरासत और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण अनुकूल बसें अब दिल्ली की पहचान का हिस्सा बनेंगी। इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। ये बस सेवा सवेरे 9 बजे से दिल्ली हाट, INSA विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और फिर इंडिया गेट होते हुए वापस दिल्ली हाट INA पर आकर समाप्त हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में सामने आए कथित शराब घोटाले में निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला कोई अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर शराब नीति में कोई खामी नहीं थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने अपने एक आदेश में साक्ष्य यानी सबूतों के अभाव की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और मामला अभी उच्च न्यायालय में जा सकता है। और उपलब्धि अब दिल्ली पुलिस की। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने की एक टीम ने विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी की कई वारदातों में शामिल रहे एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को आरोपी ने बैंक कर्मचारी बनकर KYC प्रक्रिया पूरी करने के बहाने लगभग 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। और अब चलते हैं किस महानगर की ओर, बताएंगी हमें तन्वी।
Let's move towards Chennai. The Tamil Nadu Power Distribution Corporation has instructed all field officers not to carry out any planned maintenance activities by curtailing power supply until the ongoing school exams are over. The order is applicable to Chennai City and all the districts in the state. With board exams for CBSE students already underway, the Tamil Nadu Power Distribution Corporation recently issued a circular to all the field officers not to suspend power supply for maintenance works during the exam season. And we have some more news from Chennai itself. Justice Sushrut Arvind Dharmadikari, a judge of the Kerala High Court, has been posted as the Chief Justice of Madras High Court. He will succeed Chief Justice Manindra Mohan Srivastav, who will be retiring on 5th of March. According to a statement of the Supreme Court Collegium released on Friday, the recommendation was made at the meeting was held on 26th of this month.
और दोस्तों बात अब मुंबई की। जैसा कि आप जानते हैं कि होली खेली जाएगी रंगों से आगामी 4 तारीख को, लेकिन देश के कई हिस्सों में होली की धूमधाम शुरू हो चुकी है। और उल्लासनगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण का संदेश देते हुए एक अनूठी पर्यावरण अनुकूल होली का आयोजन किया है। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशों के मुताबिक नगर निगम मुख्यालय के सामने आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने प्रकृति की रक्षा करने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने की शपथ ली। नागरिकों से धूली वंदन के दौरान पानी का सीमित इस्तेमाल करने, रासायनिक रंगों से बचने और सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल रंगों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है। नगर निगम ने निवासियों से पेड़ों को काटने के बजाय पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करके प्रतीकात्मक रूप से होली मनाने की भी अपील की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि फूलों के बाजारों का फलना फूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में फूलों का बहुत महत्व है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अजैविक फूलों पर लगे प्रतिबंध को लेकर जल्द ही एक सरकारी संकल्प जारी किया जाएगा। सरकार ने जुलाई 2025 में कृत्रिम किस्म के फूलों के इस्तेमाल, उनकी बिक्री और वितरण पर राज्य भर में प्रतिबंध की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम पचपुते और कुछ अन्य ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर इस प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में कृत्रिम फूलों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया था। और इस पर हुई बहस में हस्तक्षेप करते हुए फडणवीस ने यह चेतावनी दी कि सजावट के लिए कृत्रिम फूलों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।
Let's move towards Bangalore. The Raman Research Institute will commemorate the 98th anniversary of the Raman effect by hosting an open day in its campus in Bangalore today. Designed to inspire the next generation of scientists, the event will feature cutting-edge research displays, interactive experiments and scientific stalls across its campus. Over 1,000 students from across Bangalore have confirmed their participation in the day's festivities, which include science quizzes, photography contests and creative exhibitions. The event will run in two sessions from 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 4 p.m. concluding with a 3 p.m. award ceremony for competition winners.
और अब बात कोलकाता की पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के आपदा राहत बल की 5 दिवसीय राष्ट्रीय क्षमता निर्माण शहरी खोज और बचाव प्रतियोगिता शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मोहनपुर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और बिहार सहित पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की आपदा राहत बटालियन ने भाग लिया। और दोस्तों, कोलकाता से प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खोज और बचाव और चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। अगली प्रतियोगिता मार्च के दूसरे हफ्ते में गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन 8वीं बटालियन द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम महानगरों के मौसम की। और लेकिन महानगरों का मौसम हम आपको बताएं, उससे पहले जरा जाने हाल हैदराबाद का, जो तन्वी के पास है, वो बताएंगे।
Yes, so National Science Day celebrations began at Rashtrapati Nilayam in Secunderabad yesterday, drawing approximately 2,000 students for a two-day event focused on innovation and scientific temper. The inaugural day featured a ceremonial lamp lighting and an audiovisual tribute to Telangana's 2026 Padma awardees in science and engineering. Throughout the session, students engaged with experts through the Meet the Scientist initiative, covering topics from space sensors to DNA fingerprinting. The program also included creative workshops on science in art, interactive experiments and competitive exhibitions. Major research institutions, including the Defence Research and Development Laboratory and the Geological Survey of India, showcased advanced models, offering participants first-hand insights into technological progress before the event concludes today. And we have some more news from Hyderabad itself. Telangana Governor Jishnu Dev Verma has launched the GI on Wheels initiative, the first of its kind in India, showcasing the state's geographical indication GI tagged handicrafts on Telangana State Road Transport Corporation buses.
और दोस्तों, आज सवेरे में हमारी ये कोशिश रहती है कि जब आप सवेरे रखें घर से बाहर कदम, तो न सिर्फ देश दुनिया की ताजी जानकारी से आप लैस हों, बल्कि मौसम के मिजाज की भी हो आपको खोज खबर। तो बात सबसे पहले राजधानी की, जहां आज सुबह बहुत ही हल्का कुहासा छाए रहने की संभावना है। वहीं आज का अधिकतम तापमान यहां 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि मुंबई में आसमान रहेगा साफ, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि कोलकाता में आज आसमान बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है दोस्तों, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम आ सकता है 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees and maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with haze. The temperature will hover somewhere between a minimum of 21 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. And we have an important announcement. Akashwani News has started a new series, Prakriti Ki Baat, Akashwani Ke Saath. In the second episode of this series, we speak to Padma Bhushan Anil Prakash Joshi. In this conversation, he discusses the interrelationships between soil conservation, ecological balance, lifestyle and environment. To listen to the podcast, tune in to 100.1 MHz Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. And moving further, today is a very special day. 28th of February has witnessed several significant events throughout history. One notable occurrence is that C.V. Raman discovered a novel phenomena of light scattering, which they called modified scattering, but more famously known as the Raman effect. The day is celebrated by the government as the National Science Day every year.
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांदते जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला।
और दोस्तों हम बता दें आपको कि 28 फरवरी को देश में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही है वो दिन जब देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महान भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज की थी, और 1930 में इस महान सिद्धांत की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दरअसल वो ये पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले वैज्ञानिक थे। और दोस्तों अब याद करते हैं कुछ और ऐसी घटनाओं को जो आज की इस तारीख को यानी 28 फरवरी को बना देती हैं बेहद महत्वपूर्ण।
In 1710, Swedish forces defeated a Danish army at the Battle of Helsingborg, securing their control over southern Sweden.
और दोस्तों 28 फरवरी थी वो तारीख जब 1847 में अमेरिका ने सैक्रामेंटो के युद्ध में मेक्सिको को किया था पराजित, और 1922 में इसी तारीख को मिस्र घोषित हो गया था एक स्वतंत्र राष्ट्र।
On 28th of February 1948, the last batch of British soldiers left India. In the year 1953, Cambridge University scientists James D. Watson and Francis H. C. Crick announced that they have determined the double helix structure of DNA, the molecule containing human genes. And in 1984, the King of Pop, Michael Jackson, won 8 Grammys at the 26th Grammy Awards.
और दोस्तों 1991 में 28 फरवरी थी वो तारीख जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद खाड़ी युद्ध हो गया समाप्त। और आइए अब मिलकर हम याद करते हैं कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों आज पुण्यतिथि है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली और विद्वान राजनेता थे। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ज्ञान के प्रति लगाव होने के कारण राजेंद्र प्रसाद धनी और दरिद्र दोनों के घरों में प्रकाश चाहते थे। उनका कहना था, शिक्षा ही ऐसी चाबी है जो महिलाओं को स्वतंत्रता दिला सकती है। शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, न कि कुछ पुस्तकों का रट लेना, ऐसा वो मानते थे। वो कहते थे कि शिक्षा जनता की मातृभाषा में होनी चाहिए, और अगर हमें आधुनिक विश्व के साथ अपनी गति को बनाए रखना है तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खुद भी कई यादगार किताबें लिखी जिनमें उनकी अपनी आत्मकथा है, और चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड और महात्मा गांधी एंड बिहार।
And today is the death anniversary of Tirumala Krishnamacharya, an Indian yoga teacher, Ayurvedic healer and scholar. He is seen as one of the most important gurus of modern yoga and is often called the father of modern yoga for his wide influence on the development of postural yoga. He contributed to the revival of Hatha yoga, and Krishnamacharya held degrees in all the 6 Vedic Indian philosophies.
और दोस्तों आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की 2 बहुत बड़ी हस्तियों के। आज जयंती है रविंद्र जैन की, जो हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। खासकर उन्हें भजन गायक के रूप में अपार लोकप्रियता मिली। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से इस दुनिया को समझा। सरगम के साथ सुरों के जरिए उन्होंने जितना समाज से पाया उससे दरअसल कई गुना उन्होंने अपने श्रोताओं को लौटाया। वो मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आशु रचना भी करके उन्होंने सबको चौंकाया। जिन फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया उनमें से कुछ बहुत ही कामयाब और खास फिल्में जिन्हें उनके चाहने वाले हिंदी सिनेमा के शौकीन अपने दिल के करीब पाते हैं वो हैं गीत गाता चल, चितचोर, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही, जो पिया मन भाए, पति पत्नी और वो, और राम तेरी गंगा मैली। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कुछ खास रचनाएं जिन्हें आज भी हम अक्सर गुनगुनाया करते हैं।
And today is the birth anniversary of Brian Jones, an English musician and one of the founders of the Rolling Stones. Initially a slide guitarist, he went on to sing backing vocals and played a wide variety of instruments on Rolling Stones recordings and in concerts as well. So let's hear a portion of the live performance that the band gave back in 1964 at Ed Sullivan Theatre, New York.
I didn't sound so sweet. I had to take me a chance. I rose out of my seat. I just had to dance. Started moving my feet. Whoa, the clap of my hands. Say the joint was rocking. Going round and round.
और दोस्तों आज जयंती है पंडित नरेंद्र शर्मा की, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और संपादक थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका के संपादक रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज भवन में हिंदी अधिकारी रहे और फिर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज बम्बई में गीत भी लिखे, तत्कालीन बम्बई जो अब कहलाती है मुंबई। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, आकाशवाणी से लंबे समय तक जुड़े रहे और बहुत सी रचनाएं उन्होंने आकाशवाणी के लिए की और स्वतंत्र लेखन भी किया। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, मनोकामनी और ज्वाला परचूनी इत्यादि। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के कुछ प्यारे से यादगार गीत। और दोस्तों अब इजाजत दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी तन्वी खुराना को। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।